بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور قبل اس کے کہ ہم انداز جہاں کے موضوع کی طرف آئیں، آپ کی خدمت میں فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے چینی صدر کا دورہ پاکستان۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم چینی صدر کے دورے پاکستان کی اہمیت اور اس کے نتائج کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
چین کے صدر شی جن پنگ نے مجموعی طور پر 45 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کے بعد پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کیا۔ اس دورے کے موقع پر پاکستان اور چین نے 51 دستاویزات، معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ دونوں ملکوں نے آئندہ 3 سال میں اپنے تجارتی حجم کو 15 ارب ڈالر سے بڑھا کر 20 ارب ڈالر سالانہ تک لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے دفتر سے جاری ہونے والے تحریری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان دستاویزات، مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں میں پاک چائنا راہداری کے منصوبے کے تحت توانائی، بنیادی ڈھانچے، مواصلات جیسے شعبوں میں اہم ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ پاکستان کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ وزیر احسن اقبال نے بتایا کہ 37 ارب ڈالر پاکستان کی الیکٹریکل گریڈ پر خرچ کیے جائیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اہم کوریڈور کے سلسلے میں جو معاہدہ ہوا ہے، اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں کچھ تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کوریڈور کے تحت کچھ ایسے علاقے بھی آتے ہیں جہاں بدامنی ہے۔ اسی لیے چینی صدر کے دورے پاکستان کے دوران سیکیورٹی تعاون پر خاص زور دیا گیا۔ تاہم پاکستانی فوج نے ملک میں چین کی طرف سے شروع کیے گئے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی حفاظت کے لیے خصوصی سیکیورٹی ڈویژن کے قیام کا اعلان کر کے اس طرح کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کی طرف سے کی جانے والی ٹویٹ کے مطابق، اس سیکیورٹی ڈویژن میں پاک فوج کی 9 بٹالینیں جبکہ سول آرمڈ فورسز کی 6 ونگ شامل ہوں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق یہ ڈویژن پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی منصوبوں کی سیکیورٹی کے لیے ہوگی اور اس ڈویژن کی کمان پاکستانی فوج کا میجر جنرل رینک کا افسر کرے گا۔ اس وقت پاکستان اور چین کے درمیان جو تجارت ہو رہی ہے وہ چین کے حق میں ہے، تاہم یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے پاکستان کو زیادہ فائدہ پہنچے۔ پاکستان میں تجارتی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چین نے پاکستانی سرمایہ کاروں کو اپنے یہاں خصوصی مراعات دے رکھی ہیں جو WTO کے ضوابط سے زیادہ ہیں۔ اس طرح چین نے پاکستان پر اپنی نیک نیتی ثابت کر دی ہے۔ پاکستان میں چینی صدر کے اس دورے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور چین کے صدر کا اس ملک میں خاص استقبال کیا گیا۔ پاکستان میں چین کو بہت بھروسے مند اتحادی ملک کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ امریکی میڈیا حلقوں میں چینی صدر کے اس دورے پر تبصرے میں کہا گیا ہے کہ چین نے پاکستان کے ساتھ جس طرح کے معاہدے کیے ہیں، ان سے لگتا ہے کہ اب اس ملک میں رفتہ رفتہ چین کا اثر و نفوذ بڑھے گا، جبکہ امریکہ کا اثر و نفوذ اسی مقدار میں کم ہوتا جائے گا۔
ناظرین، یمن پر سعودی اتحاد کے وحشیانہ فضائی حملے بند کیے جانے کا اعلان آج کی اہم ترین اور سب سے بڑی خبر ہے۔ اگرچہ اس اعلان کے باوجود سعودی جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء اور طائف پر بدھ کو بھی بمباری کی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی دنیا سے متعلق ایک اور اہم ترین واقعہ، مصر میں عوام کے منتخب صدر محمد مرسی کے لیے نمائشی عدالت کی جانب سے 20 سال قید کی سزا کا اعلان بھی ہم سے توجہ کا متقاضی ہے، لیکن چینی صدر کا دورہ پاکستان اور اس پر ہمارے پاکستانی بھائیوں کا رد عمل، جوش و خروش اور خوشیاں نیز پاکستان کے سیاسی، صحافتی اور عوامی حلقوں میں چینی صدر کے دورے کو جو اہمیت دی گئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کو ترجیح دی جائے۔ ایک تو پاکستان ایران کا اہم ترین پڑوسی ملک ہے، اور پاکستان اور ایران کے دیرینہ دوستانہ بلکہ برادرانہ تعلقات کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس کی خوشی میں شریک ہوں اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، اور جو چیز ہمارے دوست اور برادر اسلامی ملک کے عوام کے لیے اہم ہے اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اس لیے ہم نے آج کے پروگرام میں چینی صدر کے دورے اسلام آباد، اس دورے کی اہمیت، اس میں انجام پانے والے معاہدوں اور پاکستان کے مستقبل اور معیشت پر ان معاہدوں کے ممکنہ مثبت اثرات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مصر میں عوام کے منتخب انقلابی صدر اور اخوان المسلمین کے دیگر رہنماؤں کے لیے نمائشی عدالت کی سزاؤں کے اعلان کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے ان پر انشاءاللہ ہم جمعرات کے پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور یمن پر سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی 28 روزہ جارحیت کے نتائج اور اس بات کا جائزہ کہ اس جنگ کا فاتح کون ہے جمعے کے پروگرام میں لیا جائے گا، لیکن آج کا پروگرام چینی صدر کے دورے پاکستان کے بارے میں ہوگا۔ ہمارے آج کے پروگرام میں اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ثاقب اکبر، کراچی سے پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین، اور لندن سے ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار نسیم صدیقی حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے آغا مسعود حسین صاحب سے جو ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی مسعود حسین صاحب، السلام علیکم۔ جناب، چینی صدر کے دورے پاکستان کی اہمیت کیا ہے؟
وعلیکم السلام مہدی صاحب، دیکھیے اس کی اہمیت اس لحاظ سے سمجھنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ چین کو نہ صرف یہ کہ اپنا بڑا اہم اور بڑا قدیم دوست سمجھتا ہے، بلکہ چین کی مدد سے وہ اپنی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت ہی کمزور اور ناتواں ہے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت کی جو شرح نمو ہے وہ 3.5 سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ IMF تو اس کو 3.2 کہتا ہے۔ تو اس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے چین کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ $45 بلین کا جو انویسٹمنٹ ہو رہا ہے چین کی طرف سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں چین کا جو انویسٹمنٹ ہے افریقہ، ایشیا، لاطینی امریکہ میں، اس سے زیادہ میرا خیال ہے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے، جیسا کہ میں نے آپ خدمت مہدی صاحب عرض کیا کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہے، پاکستان کے بہت سے انفراسٹرکچر جو ہیں وہ بہت ہی ناتواں ہیں، پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ گوادر پورٹ جو خود چین نے تعمیر کیا تھا اس پہ بھی مطلب چین جو ہے پیش رفت کرے گا، اس کو فعال بنائے گا، اور اسی کے ذریعے اس پورے کوریڈور کا آغاز ہوگا۔ لیکن میں یہ بھی آپ کی خدمت عرض کر دوں کہ اس میں چین کا بھی اپنا مفاد ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سنکیانگ کا جو صوبہ ہے، مغربی صوبہ، وہاں پر جو ہے وہ انسرجنسی ہے، اور اب تو انسرجنسی کم ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ چینی صدر اس سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ان کی ساری تربیت جو باغی ہیں ان کی ساری تربیت فاٹا میں ہو رہی ہے۔ تو اس دوران کچھ پاکستان اور چین کے درمیان تھوڑی سی کشیدگی پیدا ہوئی تھی، لیکن اب جب کہ ضرب حسب شروع ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ملیٹنٹس ہیں وہ وہاں سے فرار ہو کے دوسری جگہ چلے گئے ہیں، کچھ افغانستان چلے گئے ہیں، لیکن اس سے چین کو بہت فائدہ پہنچا ہے، اور وہاں پہ جو انسرجنسی تھی، کیونکہ چین کا جو صوبہ سنکیانگ ہے وہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کو کہ چین کی مرکزی حکومت نے پسماندہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب چین نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر اس صوبے کو پسماندہ رکھا گیا تو اس سے انسرجنسی کے بڑھنے کے امکانات ہیں، چنانچہ اب اس صوبے کو بھی بڑا ترقی دی جائے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو مغربی صوبہ ہے اس میں تیل اور گیس کے بہت زیادہ ذخائر ہیں، تو اس طرح چین جو ہے وہاں کے اپنے لوگوں کی بڑی مطلب معاشی صورتحال کو بہتر بنا سکتا ہے، ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کوریڈور جو بھی گزرے گا پاکستان کے جن جن علاقوں، چاروں صوبے سے گزرے گا، وہاں پہ بھی جو ہے اقتصادی ترقی جو ہوگی۔ اور ایک اور بات جو ہے میں بتا دوں آپ سے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، چین کا جو ایگزم بینک ہے AII بینک جو ہے वो अपने हाथ में रखेगा। ये दूसरी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ठेके की सूरत में कुछ पाकिस्तानियों को मिलेगा, लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान के चीन की क़यादत अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बड़ा बदनवानियों पर मबनी है, तो वो पैसे जो है ना इनके हाथ में नहीं रखेंगे। तो इससे देखना यह है कि वाकई के चीन जो है ख़ुद इसकी निगरानी करेगा और इससे पाकिस्तान की तरक्की जो है वो बहुत आगे जाएगी। पाकिस्तान में जो मायूसी फैली हुई थी इक्तसादी तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी, तो इस उनकी आमद की वजह से एक खुशी का एक नई लहर पैदा हुई है। पाकिस्तान के आवाम को ये तवक्कात है कि ये जो 45 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा इससे शफाफियत भी होगी और लोगों की तरक्की भी जो है उससे मुमकिन हो सकेगी। और शफाफियत का लफ्ज़ मैं आपकी खिदमत पे मेहदी साहब भी अर्ज़ कर दूँ कि ये हर तरफ से आवाज़ उठ रही है कि अगर इसमें शफाफ नहीं हुआ तो इसकी फिर जो जो हैसियत है इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर की उसकी हैसियत मुतासर होगी। और इसके अलावा एक और बात मैं आपकी खिदमत अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो छोटे सूबे हैं उनको अभी से ये शिकायत पैदा हो गई कि इस्लामाबाद के खुसूसन एहसन इकबाल के सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि वो इसके पूरे जो कॉरिडोर का नक्शा है जहाँ जहाँ से गुजरेगा उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकायदा आप देख रहे हैं कि इससे आवाज़ उठी है, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठी है, उन्होंने चीनी एम्बेसडर जो इस्लामाबाद में उनसे बात की है। तो अगर इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने अगर सबको स्टेक होल्डर को मतलब ये कि अपना एतमाद में नहीं लिया तो मैं समझता हूँ कि इसके बड़े पाकिस्तान में इक्तिसादी तरक्की के हवाले से और इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो मुतनाज़े बन सकता है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे लंदन स्टूडियो में मुमताज़ तजिया निगार और सहाफ़ी नसीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीकी साहब, चीनी सदर के दौरे को पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में काफ़ी अहमियत दी गई है, वजह क्या है?
देखिए अस्सलाम वालेकुम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म की जंग चल रही थी और टेररिज्म चल रहा था उस हिसाब से दुनिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भेजनी ख़त्म कर दी थी और पाकिस्तान में कोई भी मुल्क या प्राइवेटली जो है वो इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं हो रही थी और पाकिस्तान बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहा था। जैसे आगा मसूद साहब ने कहा कि इस वक्त हमारा GDP जो है वो 3.2 या 3.5 है, जबकि ये पहले तकरीबन 5 के करीब होता था। तो मसला ये आता जा रहा था कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे जो है उसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे थे और ये जो चाइना के सदर का दौरा हुआ है जो कि पहले से तयशुदा था, अगर इमरान खान साहब का धरना ना होता तो शायद ये बहुत पहले ये दौरा हो चुका होता। तो पाकिस्तान में क्योंकि पिछले दिनों से कुछ स्टेबिलिटी आई है और ख़ास तौर पर जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं जनरल राहिल साहब, उन्होंने जो ज़रबे असब का स्टेप लिया था उसके बाद से पाकिस्तान में एकदम से हालात चेंज होने शुरू हो रहे थे। नहीं तो ये होता था कि कोई एक बड़ा दहशतगर्दी का हमला होता था और उसके बाद जो है दूसरा हमला भी कोई 15 दिन 20 दिन के वक्फे से हो जाता था, जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की कौम भी एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी और बैरून मुल्क से भी कोई ये सोच नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो ज़रब असब का जो असरात है वो पूरे दुनिया में देखे जा सकते हैं और डेफिनेटली चाइना भी बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दोस्त है पाकिस्तान का, तो उन्होंने भी इस चीज़ को मॉनिटर किया और उन्होंने ये महसूस किया कि अब पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात काफ़ी कम होते जा रहे हैं और पाकिस्तानी फ़ौज ने काफ़ी हद तक जो है इसको कंट्रोल कर लिया है। और ये जो माहदे हुए हैं पाकिस्तान में चीनी सदर आए हैं, एक तो वैसे ही चीन के साथ बड़ी बरदराना ताल्लुकात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी आवाम खुश होती है जब भी चीन से कोई वहाँ पर आए या दौरा करे। दूसरी ये बात है कि ये जो ग्वादर से काशगर तक सड़क बन रही है, ये पूरा जो एक कॉरिडोर बन रहा है, ये असल में पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना को अरब ममालिक तक पहुंचने के लिए जो है वो तकरीबन 30 से 31 हज़ार मील का सफ़र तय करना पड़ता है, समंदर के ज़रिए भी बहुत बड़ा रास्ता है, जबकि अगर ये पोर्ट तैयार हो जाता है, ये कॉरिडोर तैयार हो जाती है तो इसका फासला जो है तकरीबन 2000 मील है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से बड़े इजीली, टाइम भी उसमें कम कंज्यूम होगा, उसमें लागत भी कम आएगी और आप जो अरब मंडी है उसमें भी अप्रोच जो चाइना की है वो आराम से पहुंच जाएगी। तो इसलिए इसमें चाइना का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और पाकिस्तान को डेफिनेटली जब कॉरिडोर बनेगा उसके आसपास के सूबे देहात जो जो रास्ते आएंगे उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, तो इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और चाइना के लिए भी। और दूसरी बात यह है कि जैसे आगा मसूद साहब ने कहा था कि इसमें शफाफियत का अमल जो है वो उसकी उम्मीद की जा सकती है काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा। इस तरह तो तकरीबन पिछले कुछ 10 सालों में अमेरिका ने भी पाकिस्तान को 31 बिलियन डॉलर्स की इमदाद दी है, लेकिन आपको मालूम है कि वो सारी इमदाद या अमेरिकन कंसल्टेंट्स इस्तेमाल करते थे या हमारी इलीट क्लास मैं उसको कहूँगा जो हर दौर में पाकिस्तान को चलाती है और उनके ज़रिए होती है, और वहाँ पे करप्शन और किकबैक्स और इस तरह के बहुत सारे मामलात आ जाते हैं। जबकि ये जो चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इस इन्वेस्टमेंट को चाइना खुद मॉनिटर करेगा, उनके बैंक्स के थ्रू होगी, तो इसमें शफाफियत का अमल भी काफ़ी ज़्यादा होगा और होने की उम्मीद भी है। और जब ये इन्वेस्टमेंट्स अगले 15 साल तक पाकिस्तान में होगी, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात इसी तरह बेहतर रहें, दहशतगर्दी का अंसर जो है वो ख़त्म होता चला जाए, तो इस लिहाज से पाकिस्तान में बड़ी बेहतरी आएगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इस मुआहदे की वजह से जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में तरक्की के रास्ते जो है वो तय करेगा। जी,
पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के इस्तेहकाम के बारे में आप क्या कहेंगे?
उसमें भी ऐसा रीज़न है कि हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना का जो मज़हब है वो अलहदा अलहदा, डेफिनेटली वहाँ पे मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिकली जो है वो इस खत्ते में बहुत ज़्यादा अहमियत है, और चाइना का दो दुश्मन जो बड़े हैं वो एक उसमें आप इंडिया ले सकते हैं जो कि पाकिस्तान का भी दुश्मनी चली आ रही है, अगर हुकूमती सतह पर की जाए, लोग तो जो कौम है अवाम है वो तो नहीं चाहती, लेकिन हुकूमती सतह पर एक उनकी जो है वो हमारी इंडिया के साथ भी है, और अमेरिका को भी जो है वो पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, हुकूमती सतह पे पसंद किया जाता है, लेकिन अवामी रद्दमल आप जब भी देखेंगे तो अवाम जो है वो अमेरिका को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो इसी तरह चाइना में भी जो है अमेरिका के साथ लाइकिंग डिसलाइकिंग है, क्योंकि चाइना जो है वो सुपर पावर बनने की पूरी सलाहियत रखता है, आप देख सकते हैं कि चाइना ने जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी कितनी इन्वेस्टमेंट की है, उसका अमल दखल अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी बहुत बढ़ता चला जा रहा है, यूरोप की मंडी में भी चाइना की रसाई है, अगर ये ग्वादर से काशगर का रास्ता खुल जाता है तो अरब मंडी में भी जो है वो चाइना की बहुत ज़्यादा पहुंच हो जाएगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और हमेशा से चाइना ने पाकिस्तान की बुरे वक्त में मदद की है, पाकिस्तान ने चाइना की मदद की है, तो एक बरादराना ताल्लुक है आपस में, और जिसको अवाम भी पसंद करती है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अवाम किस चीज़ को पसंद करती है, तो पाकिस्तान की तमाम अवाम जो है वो चाइना को बहुत पसंद करती है, उनके साथ भाइयों वाला रिश्ता तसव्वुर करती है, जबकि चाइना में भी यही रद्द अमल देखा जाता है कि चाइनीज़ अवाम जो है वो पाकिस्तानियों को पसंद करती है, पाकिस्तानियों के साथ घुलना मिलना कारोबार करने को पसंद करती है, तो एक बरादराना ताल्लुक है दोनों ममालिक में, और हम इसको एक अच्छी नज़र और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ देख सकते हैं। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा मसूद साहब, जनाब पाकिस्तान के अक्सर कालम नवीसों ने इस्लामाबाद और बीजिंग की दोस्ती को मिसाली करार दिया है। इस दौरे से अलग हट के भी पाकिस्तानी कौम चीन को काबिल एतमाद दोस्त समझती है, इसके बरक्स अमरीका पर इस कौम को एतमाद नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी कौम अमरीका से शाकी है। पाक चीन दोस्ती और पाक अमरीका ताल्लुकात का मुवाजना आप किस तरह करेंगे?
देखिए, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है
जी,
और सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, वो सर्वे ये था कि आप चीन को पसंद करते हैं या अमेरिका को, तो 78% पाकिस्तान के आवाम ने कहा कि हम चीन को पसंद करते हैं, जबकि 17% जो थे उन्होंने अमेरिका की हिमायत में बात की, बाकी कुछ खामोश रहे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ चीन के लिए पाकिस्तान के आवाम में, पाकिस्तान और आवाम के दिलों में चीन के लिए मोहब्बत बढ़ रही है। उसकी एक तो वजह यह है कि चीन ने तसलसल के साथ पाकिस्तान की मदद की है, चाहे वो 2005 का जलजिला हो या 2010 के सैलाब हो, उसमें हमेशा चीन जो है पेश पेश रहा है, माली मदद भी की है, उनके माहरीन भी आए और पाकिस्तान के जो तबाह हाल मशियत थी उसको भी संभालने की कोशिश की है। तो इस तरीके से चीन ने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अवाम की एतमाद हासिल किया है, जबकि अमेरिका के सिलसिले में आपको तो मालूम है कि मशरक़ी पाकिस्तान के सिलसिले में सातवें बहरी बेड़े के जो जो बात गश्त थी कि वो आने वाला है और बचा लेगा, जब वो नहीं आया तो उससे पाकिस्तान के आवाम को बहुत मायूसी हुई। फिर अमेरिका की जो पॉलिसी है वो जारियत पर मबनी है, वो हर मुल्क के अंदर जो है वो अपना एक मिलिट्री فورن پالیسی کو آگے بڑھاتے ہیں, پہلے ملٹری پھر بعد میں اپنے فورن پالیسی, تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں پورے مرب یہ کہ تیسری دنیا کے عوام اس بات کو بخوبی سمجھ گئے ہیں کہ امریکہ کے جو مفادات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس سے عوام اور حکومت دونوں جو ہیں جن کو ترقی کرنی چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے وہ ممکن نہیں ہو سکے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے لیے نرم گوشہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری تیسری دنیا کے اندر نہیں ہے, حالانکہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے لاتن نئی امریکہ میں دوبارہ جا رہا ہے, دوبارہ ان کے ہارٹ اینڈ مائنڈ کو ون کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ جب تک کہ امریکہ اپنی وار پالیسی ملٹری پالیسی پر جو مبنی اس کی فورن پالیسی ہے اس پالیسی کو نہیں بدلے گا تو میرا خیال ہے کہ لوگوں میں اس کے لیے کوئی محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ چین کے سلسلے میں خود ساؤتھ چائنا میں امریکہ کی پالیسی کیا ہے, سارے اپنے اتحادیوں کو ملا کے جس میں جاپان بھی شامل ہے, آسیان کے ممالک بھی شامل ہیں, وہ چین کو وہاں پہ بھی ہراساں کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ امریکہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ممالک, خصوصیت کے ساتھ چین جس کی دوسری بڑی معیشت جو ہے اس وقت پوری دنیا پہ چھا رہی ہے, وہ کسی طریقے سے اپنے دیگر ملکوں کو ہم نوا نہ بنا سکے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چین کے بہت سے پروڈکٹ جو ہیں اس وقت امریکی مارکیٹ میں چھا گئے ہیں, چین کے بہت سے پروڈکٹ انڈین مارکیٹ میں چھا گئے ہیں, چین کے بہت سے پروڈکٹ پاکستان کی معیشت پہ چھا گئے ہیں. تو اس سے کم از کم ایک نتیجہ تو نکالا جا سکتا ہے کہ چین جو ہے وہ بنیادی طور پر ابتدا میں اور اب بھی اس کی خواہش یہ ہے کہ لوگوں کو معاشی طور پر خود کفالت کی طرف لایا جائے. جب تک کہ اکنامک اٹارکی پیدا نہیں ہوگی وہ ممالک جو ہیں اپنا فورن پالیسی بھی نہیں بنا سکیں گے اور نہ ہی اس کا ان کے اندر کوئی انٹرنل ہارمنی پیدا ہو سکے گی. تو یہ چائنا کا جو فلسفہ ہے اور یہ فلسفہ جو معاشی طور پر غریب ملکوں کو مضبوط کرنا, اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, خود کفالت کی طرف لے جانا, میں یہ سمجھتا ہوں اسی یہی وجہ ہے کہ لوگ چین کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں کہ چین کے صدر نے اپنی تقریر میں بہت اچھی بات کہی, انہوں نے کہا ہم تنہا تھے, آئسولیٹڈ ہو گئے تھے, لیکن پاکستان نے 1971 میں چین کے لیے ہنری کسنجر صاحب گئے تھے اسلام آباد سے اور وہاں بیجنگ میں جا کے انہوں نے ماؤ زیڈ تونگ سے ملاقات کر کے چین اور امریکہ کے مابین تعلقات کو استوار کیا. تو وہ ان کا حوالہ چینی صدر نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم تنہا تھے اور پاکستان نے ہماری مدد کی. اس طریقے سے دو طرفہ تعلقات ہیں, دو طرفہ تعلقات میں مفاد بڑھ رہی ہے, ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ضروریات کو سمجھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چین کی جو قیادت ہے وہ پاکستان کی جو ضروریات ہے اس سے واقف ہے, اور ان کو یہ معلوم ہے کہ جب تک کہ پاکستان اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرے گا پاکستان جو ہے وہ اپنے جو انٹرنل معاملات ہیں اس کو بھی حل نہیں کر سکے گا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان اپنے قریبی جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے. انہوں نے ہندوستان کا بھی نام لیا, انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے بھی پاکستان کو چاہیے کہ اپنے تعلقات بہتر بنائے, کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ, لیکن یہ کہ یہ تعلقات اگر بہتر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ساؤتھ ایشیا میں, بار بار انہوں نے ساؤتھ ایشیا کا نام لیا, تو اس طرح ساؤتھ ایشیا میں امن کی جو ہے فاختہ پرواز کرے گی. پھر ساؤتھ ایشیا میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 50% لوگ جو ہیں وہ خط افلاس کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, بڑے غریب لوگ ہیں, نانے شبینہ کے محتاج ہیں, $1 ڈے پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جو کنسیپٹ ہے پیس کا کنسیپٹ جو ہے چائنا کا, اس سے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے چین جو ہے مزید تیسری دنیا کے عوام کے دلوں میں جو ہے اپنی جگہ پیدا کرے گا.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. ناظرین چینی صدر کے دورے پاکستان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ثاقب اکبر سے اسکائپ کے ذریعے رابطہ برقرار ہوا ہے. جی ثاقب صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جناب ہم گفتگو ہماری کافی دیر سے جاری ہے, آپ سے ذرا تاخیر سے رابطہ ہوا. چین پر پاکستانی قوم کے اعتماد اور امریکہ کی نسبت بے اعتمادی کی وجہ کیا ہے؟
میرا خیال ہے بہت ہی ایک اہم ایک پورا اس پورے سناریو میں یہ سوال ہے آپ کا. در حقیقت یہ تو اب انالیسز خود مغربی دانشور بھی اور وہاں کے بھی تجزیہ نگار جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف امریکہ کی اگر سال ہا سال کی پاکستان سے سو کالڈ دوستی اور روابط اور مدد उसका एनालिसिस किया जाए, और उसके मुकाबले में अभी जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको आपस में देखा जाए, तो ये बिल्कुल जाहिर होता है कि अमेरिका इस काबिल ना हो सका कि पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा जो है वो कर सके। उसने हमेशा पाकिस्तान में जो हमारी आमरियतें आईं उनके तवसुत से अपने इस्तेमारी मकासद जो है वो हासिल किए। उसने अपना असला बेचा, उसने अपने जो फौजी और स्ट्रेटेजिक मफादात थे उसके लिए हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस को और हमारे जो है वो दीगर फोर्सेस को जो है उसने इस्तेमाल किया। नतीजा ये कि भाई ये पैसे हैं और ये आपने काम करना है, और जब काम हो जाए तो फिर वो कहाँ और फिर हम कहाँ वाली बात होगी। नतीजा हमेशा इसका आखिरकार ये हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो किसी भी एक बड़े फेज से गुजर के, चाहे वो जियाउल हक के ज़माने में अगर आप देख लें, चाहे आप वो परवेज मुशर्रफ के ज़माने में गुजर देख लें, कि इतनी बज़ाहिर इतनी अपना अमेरिका के साथ दोस्ती की पींगे हैं और पाकिस्तान जनाब फ्रंट स्टेट अपना स्टेट और पाकिस्तान इतना अजीब दोस्ती की बातें, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आखिरकार पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी, आखिरकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी, आखिरकार पाकिस्तान को जितनी उन्होंने इमदाद दी उससे ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो नुकसान में गया। पाकिस्तान 70,000 पाकिस्तान के फौजी और सिविलियन जो है वो शहीद हुए और इतनी बड़ी तबाही आई। ये जिस तरह की दोस्ती अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ की वो तो वो जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो मेरा ख्याल ये है कि अब मगरिब के भी एनालिस्ट जो है ना वो इस बात पे सोचने पे मजबूर हो गए कि अमेरिका की दोस्ती ना फकत ये पायदार ना थी, ना फकत ये दुरुस्त डायरेक्शन में नहीं थी, बल्कि उसने आखिरकार पाकिस्तान को जो है वो पहुंचाया। अब ये जो नए ताल्लुकात, पहले भी अगरचे हमारे ताल्लुकात तो बज़ाहिर चीन के साथ बहुत अच्छे रहे, लेकिन खुद चीन को भी अब डेवलप होते होते एक यानी एक वक्त लगा, और अब कुछ अरसे से एक मोमेंटम उसकी मईशत ने गेन किया। उसने अपने भी बहुत सारे मामलों को फ्रीज कर दिया ताकि वो फौजी और इस तरह के अमूर पे अपने जो है वो पैसे भी ज़ाया ना करे और अपनी एनर्जीज को भी उसमें ज़ाया ना करे। और चीन ने एक डेवलपमेंट के लिए इतनी बड़ी आबादी के मुल्क ने जिस अंदाज से डेवलपमेंट करके दिखाई है दुनिया के सामने, तो उसने हैरान कर दिया। अब ये जो चीन और पाकिस्तान के जिस तरह के ताल्लुकात डेवलप हुए हैं इसके बहुत ही दूरस्थ जो है वो नतायज मैं देख रहा हूँ। एक ये कि पाकिस्तान जिस तरह के मामलात में पहले इन्वॉल्व होता रहा है, मैं नहीं समझता कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के डेवलप होने के बाद और इसको इसके एक मोमेंटम गेन करने के बाद पाकिस्तान इस तरह की कोई पॉलिसी इख्तियार करेगा। नए जो फौजी सरबराह आए हैं मैं समझता हूँ उन्होंने आके असल में गेम चेंजर वो है, उन्होंने सारी सूरत हाल को जो है वो तब्दील कर दिया। ये ज़र्बे अज़्म पहले क्यों नहीं शुरू हो सका, हमें ये अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत बड़ा पीरियड गुज़श्ता आर्मी चीफ ने जो है वो ज़ाया कर दिया, और ये नए आर्मी चीफ ने आके बहुत ही मुस्बत काम किया और पाकिस्तान में बिल्कुल हालात जो है वो बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। फिर उसके बाद एक नई जंग में पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश की जा रही थी, और अमेरिका के भी वजीर खारजा का टेलीफोन आया पाकिस्तान के वजीर आजम को जान कैरी को कि ये सऊदी अरब के मामलात में जो है वो हमें सऊदी अरब के यानी इस वक्त मुश्किल में है और सऊदी अरब की मदद करनी चाहिए। जो मुश्किल में थे उनकी मदद का तो किसी ने जिक्र नहीं किया, यानी पाकिस्तान की आर्मी को एक नई मुश्किल में डालने और पाकिस्तान को एक नई मुसीबत में फंसाने का एक बहुत बड़ा जाल जो है वो तैयार किया गया था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के अपोजिशन ने, पाकिस्तान की मेजर पार्टीज ने और पाकिस्तान की फौज ने बहुत किया कि उसने अपने आप को इसमें इंडल्ज करने एक से अपने आप को बचाया और पाकिस्तान को एक नई मुसीबत में नहीं जाने दिया। अब मैं समझता हूँ कि जब आप पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की के लिए एक अजीमुशान शाहरा बन रहे हैं और एक खुद पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसके मुस्बत असरात पड़ेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि आगे भी तब्दीलियाँ जो हैं वो आएंगी। खुद मतलब मशरक़ के वुस्ता पर भी इसके मुस्बत असरात पड़ेंगे, अफ्रीका पर भी इसके मुस्बत असरात पड़ेंगे और पाकिस्तान के हमसायों के साथ ताल्लुकात की नौीयत भी मज़ीद जो है वो मुस्बत से मुस्बतर होती चली जाएगी। ये जो इंडिया में बाद लोगों ने शोर शराबा किया, मेरा ख्याल है इंडिया की क्यादत, सियासी क्यादत इस मसले को अच्छी तरह समझती है कि ये मीडिया के अपने काम है जो जो वो करता रहता है। लेकिन आखिरकार आप ये देखें कि पहले चीनी सदर इंडिया जा चुके हैं, आप इंडियन वजीर आजम जो है वो जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई नई मुसीबत इंडिया भी शायद मोल लेने को तैयार ना हो। और ख़ुद ये जो नई डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं कि ये जो गैस का मुआहिदा जो है ये रुका हुआ है, आगे इस पर अमल दरामद अब चीन के सदर के यहाँ आने से उसके लिए भी राह हमवार हो गई। ईरान ने भी 5+1 के साथ जो मुआहिदा किया है, और अगर जिस वक्त के उसकी जब अमली शक्लें सामने आएंगी तो फिर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली की राह जो है हमवार हो जाएगी। और ये जो दाएश और इस तरह की दीगर अलकायदा और इस तरह की अलनुसरा, इस तरह की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, आखिरकार इनके ऊपर भी एक ज़रबेकारी पड़ेगी और बहुत सारे मुल्कों को, तुर्की को भी सोचना पड़ेगा, बाकियों को भी सोचना पड़ेगा कि ये हम किस अपने आप को मुसीबत में जो है वो फंसाते चले जा रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो मैं तब्दीली जो है वो देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान चंद सालों के अंदर अपने कदमों पर जो है खड़ा होने के काबिल हो जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगा मसूद साहब, जनाब वो अहम तरीन मौजू क्या है जिस पर चीनी सदर के हालिया दौरे में सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई?
जी देखिए, सबसे ज़्यादा तवज्जो तो आपको मालूम है कि दहशतगर्दी के हवाले से दी गई, और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी जो है ये न सिर्फ ये है कि साउथ एशिया का और चीन का एक कॉमन एनिमी है, बल्कि ये कि पूरी दुनिया के अमन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि उनका पीस मैसेज था जो मैंने आपकी खिदमत में बताया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर एक से एक मतलब ये कि अमन की बात करें, उनसे एक दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाए। उन्होंने मिसाल दी अपने हांगकॉन्ग की कि 100 साल के बाद भी जो कहा कि आप देखिए कि वो पुरमन मुज़ाकरात के ज़रिए जो है हमने उसको हासिल कर लिया। और इसके बाद उन्होंने फार्मूसा की बात की, उन्होंने कहा कि उनसे हमारे जो तजारती ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा चीन में आके, मेन लैंड चीन में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं याद करूँ कि ये एक ऐसी बात है जिस पर कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान और चीन के माबेन जो है मज़ीद मफाहमत बढ़ेगी, क्योंकि देखिए दहशतगर्दी जो है वो मुश्तरका दुश्मन है, वो चीन का भी दुश्मन है, वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है, बल्कि इस साउथ एशिया के तमाम ममालिक का दुश्मन है। तो वो यही चाहते हैं कि एक तरफ तो अमन की बात हो, एक तरफ मफाहमत की बात हो, एक तरफ ताल्लुकात को ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनाने की बात हो, दूसरी तरफ ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि ये जो अफरीत है दहशतगर्दी का, इसको ख़त्म करना चाहिए। और उन्होंने राहिल शरीफ से जब मुलाकात की तो उन्होंने बाकायदा तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि आपने जो कदम उठाया है ये बहुत बेहतर कदम है। उन्होंने कहा कि हम बहुत पहले आपसे ये दरख्वास्त करते थे कि चीन के अंदर जो बाकायदा दहशतगर्दी हो रही है उसके ताने बाने जो हैं फाटा से मिल रहे हैं, तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि बेहतर है कि ये जो एपी सेंटर बना हुआ है दहशतगर्दी का, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी खुलकर बात हुई है और ये बात तो होनी भी चाहिए। इससे मतलब ये कि जो तहफ़ुज़ात होते हैं एक तो वो दूर होते हैं, दूसरी बात ये कि ताल्लुकात की जो नौइयत है उसमें बड़ी मजबूती पैदा होती है, उसमें बड़ा इस्तेहकाम पैदा होता है। तो ये उनके जो जो मैसेज हैं मैं समझता हूँ कि बहुत ही बहुत अच्छे मैसेज हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत को समझना चाहिए कि उनकी पूरी इक्तसादी तरक्की का के दो मेयार हैं। एक मेयार वो ही है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान के अंदर जो है मेरिट बेस्ड इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं चीन की मदद से, दूसरी उनको ये देखना है कि अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह उस्तवार करते हैं, और खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान के साथ। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान यकीनी तौर पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 3 जगहें हो चुकी हैं, उनके माबेन अभी भी गलत फहमियाँ हैं, हालांकि तजारत हो रही है, 2 बिलियन से डॉलर ज़्यादा की तजारत इन दोनों मुल्कों के दरमियान हो रही है, सब्ज़ी भी आ रही है और पाकिस्तान से टेक्सटाइल गुड्स भी जा रहे हैं, लेकिन इसमें वो गर्मजोशी नहीं है जो गर्मजोशी एक पड़ोसी मुल्क के साथ होनी चाहिए। यही वजह है कि साउथ एशिया का जब वो जिक्र कर रहे थे चीन के जी जिनपिंग, तो ही वॉन्टेड एक्चुअली कि देर शुड बी ए वेरी क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू कंट्रीज एंड द पीस प्रोसेस शुड कंटिन्यू। दिस इज द मैसेज हैज गिवन टू द पीपल ऑफ द साउथ एशिया।
बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। जनाब दहशतगर्दी के ताल्लुक से देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से अमेरिका के साथ तआवुन कर रहा है दहशतगर्दी मुखालिफ जंग में, अब अगर चीन और पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए उसी सतह का तआवुन अगर शुरू हो तो फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वजूद के बारे में आप क्या तवक्को रखेंगे?
जहाँ तक आपने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी में उसका पार्टनर था या उसने कभी मदद करने की कोशिश की, तो आप ये देखें कि वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकन मीडिया जो है उसने हमेशा पाकिस्तान को ही टेररिस्ट स्टेट या वहाँ से जो टेररिस्ट निकलते हैं, जो दुनिया में कोई भी बात है तो उसको पाकिस्तान से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, और किसी भी मौके पे ये नज़र नहीं आता कि कोई अमेरिका पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली है। हुकूमती सतह पे तो ज़रूर कहा जाता है कि जी अमेरिका पाकिस्तान का पार्टनर भी है, दहशतगर्दी में मदद भी कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आया कि वो उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मदद की हो, बल्कि हमेशा फॉरेन और अमेरिकन मीडिया में पाकिस्तान को ही टेररिस्ट साबित करने की कोशिश की जाती है। जो छोटी सी बुराई या कोई नेगेटिविटी पाकिस्तान में होती है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, जबकि कोई अच्छी कार्रवाई है या कोई अच्छा इमेज है पाकिस्तान का उसमें कभी भी वेस्ट में या अमेरिका में उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। जबकि चीन जो है वो कभी भी आपको अग्रेसिव नज़र नहीं आएगा, उसने कभी मुल्कों पे कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं की है, हमेशा चाइना की कोशिश है कि वो एक कारोबारी मुल्क के तौर पे दुनिया में सामने आए, और उसने पूरी दुनिया में साबित भी कर दिया है कि वो एक कारोबारी मुल्क है और वो दुनिया में अमन के साथ रहना चाहता है और कारोबार को वसत देना चाहता है, और इसी वजह से चाइना दुनिया भर में आप देख लें जितने भी ममालिक हैं उनमें पॉपुलर होता जा रहा है, जबकि अमेरिका की लाइकिंग दुनिया में आप जितने भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या दूसरे कंट्रीज़ हैं उसमें अमेरिका की लाइकिंग बिल्कुल भी नहीं है जितनी कि अब चाइना की होती चली जा रही है। तो पाकिस्तान की अगर चाइना इस दहशतगर्दी की जंग में मदद करता है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि चाइना पाकिस्तान का हमसाया है, अगर हमसाया मदद के लिए आप पुकारेंगे तो हमसाया फौरी तौर पे आपकी मदद के लिए आ जाता है, जबकि अमेरिका इतनी दूर बैठा हुआ है, ना तो वो स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान का दोस्त बन सकता है, ना मज़हब के हवाले से, ना कोई और हवाले से, तो अमेरिका के साथ जो दोस्ती है वो बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की है कि रशिया आपके बाजू में है, ईरान आपके बाजू में है, इंडिया आपके साथ है, चाइना है, तो पाकिस्तान को तो चाहिए कि अपने करीब के जितने भी ममालिक हैं इनके साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करें, ताकि जब भी कोई मुसीबत आए तो ये जो हमसाए मुल्क हैं ये पाकिस्तान की मदद कर सके। और मैं तो यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जो पाक ईरान जो तेल की पाइपलाइन का मुआहदा, गैस पाइपलाइन, हो सकता है कि आने वाले वक्तों में चाइना भी उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा चाइना ने जो है वो टेक्निकली जो मदद होती है वो भी फराहम की है, और हो सकता है इस मुआहदे का नाम आइंदा आने वाले वक्तों में जो है वो पाक ईरान चाइना दोस्ती के नाम से सामने आए, और ये गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा है उसमें चाइना भी पाक और ईरान के साथ शामिल हो जाए। तो चाइना मेरे ख्याल से हर मौके पे जो है ना पाकिस्तान की उसने मदद की है जहाँ भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, जबकि अमरीका जो है वो कहता कुछ है और करता कुछ है, तो चाइना जो है वो वाकई एक जो सही मायनों में दोस्त आप कह सकते हैं वो है पाकिस्तान का। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आगा मसूद साहब। डेढ़ मिनट का वक्त हमारे पास रह गया है, इस दौरे के नताइज से आप कितने मुतमईन हैं?
देखिए मैं इस दौरे के नताइज से मैं इस तरह मुतमईन हूँ कि जितने भी 51 और 52 जो MOU साइन हुए हैं उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी नो हाउ नहीं है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को जो है वो आसानी से चला सकें, तो यही बात मैंने आपसे कही थी कि अगर मेरिट बेस्ड काम हुआ तो मेरा ख्याल है कई ममालिक आके पाकिस्तान की मदद करेंगे चीन की मदद से। और जहाँ तक देखिए मैं आपकी खिदमत की अर्ज़ करूँ कि शफाफियत मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ, सारे कलम निगाह जो है वो यही लिख रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बड़ा करप्ट है, और ये कि गुज़िश्ता की हुकूमत ने तो पाकिस्तान के सारे इदारों को तबाह कर दिया था, तो अब चीन जो है बहुत अच्छी तरीके से जानता है, बल्कि आपको मालूम मैं चाइना टुडे पढ़ रहा था तो उसमें बाकायदा उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की सियासी क़यादत से बारहा कहा है कि पहले आप करप्शन को दूर करें, अपने घर को ठीक करें, अपने आप को मजबूत करें, तो इस किस्म की हिदायत जो है ना मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है और हमें इस पर अमल करना चाहिए, और हमारे इस इमेज को जो कि हम पूरे दुनिया में हमारा दो इमेज बन चुके थे कि हम दहशतगर्दी को फ़रोग देते हैं, दूसरा हमारा इमेज ये है कि हम करप्शन में जो है ना वो सफ़े अव्वल पे खड़े हुए, ये चीज़ें पाकिस्तान को अब इस कॉरिडोर के हवाले से दूर करनी होंगी। और अगर इन्होंने नहीं किया तो मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि मुशरफ जदी साहब का मैं एक हवाला देना चाहता हूँ, जो कि फॉरेन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के एडवाइज़र भी थे, फॉरेन ऑफिस को भी एडवाइज़ करते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये दो चीज़ें, मिसाल के तौर पर करप्शन का एलिमिनेशन ख़त्म होना और इसके साथ साथ ये है कि आप शफाफियत को आगे लेंगे, तो तब ये कॉरिडोर जो है ना तमाम सूबों की हिमायत और एतमाद हासिल कर सकेगा। लेकिन अगर इन्होंने वही किया जो 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 इनके मर्जी होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं बहुत ही इन्वर्ट किस्म के आदमी हैं, वो उनका कोई बड़ा विजन नहीं है। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपकी खिदमत अर्ज करूँ कि जहाँ नूर खान चकलाला एयरबेस पे जो लोग बैठ खड़े हुए थे उनको रिसीव करने के लिए, उसमें उन्होंने अपने भाई को भी खड़ा किया था शहबाज को, जबकि छोटे सूबे के लोगों ने बड़ा एतराज़ किया कि बाकी जो जो वजीर आला थे वो कहाँ थे। तो ये इस किस्म की अकबा परवरी जो नज़र आ रही है, अगर इन्होंने किया तो मेरा ख्याल है कि कॉरिडोर जो है बहुत मुतासर होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आगा मसूद हुसैन साहब। इसी के साथ हम नसीम सिद्दीकी और डॉक्टर साकिब अकबर के भी शुक्रगुजार हैं, और नाज़रीन प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।